जब महाराज जी बात कर रहे हैं तन धन सकला त्याग के, जब ये जीव तन धन सब सब तन धन में मन भी आ गया, तन मन धन होता है ना, इसमें मन भी
आ गया,
तो जीव तन मन धन पूरा इसका त्याग कर देता है, तब जीव जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यदि इसको पूरा त्याग कर दे तो जीव ईश्वर के साथ एक हो जाता है, या यूं कह लें कि जीव ईश्वर का अनुभव कर लेता है। प्रश्न उठता है कि देह बनकर मैं इस समय घूम रहा हूं संसार में, मेरे अंदर ये पक्का निश्चय है कि मैं देह हूं, मुझे इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, मैं देह हूं ये सब जानते हैं, और इसके बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई सीखता नहीं है इसके बारे में। लेकिन जब मोक्ष गति की बात आती है, बंधन मुक्ति की बात आती है, तब ये सारी चीजें हमको सीखनी पड़ती है। देखो गीता में इसको कैसे बयान किया गया है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, अब ये अर्जुन को वो क्यों समझा रहे हैं ये बात कि अर्जुन को वो जीव करके संबोधन कर रहे हैं, अर्जुन को देह करके संबोधन नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को जीव करके संबोधन कर रहे हैं कि अर्जुन जीव है जो कि मन और देह के बंधन में है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि गुण गुणों में वर्त रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो प्रकृति है, मेरी देह, मेरा जो मन है, महाराज ने जगह जगह बयान किया है संत अभिलाष में कि ये तीन गुणों से युक्त है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और ये गुण आपस में निरंतर बदलते रहते हैं, और इनके बदलने करके हमारे मन में विभिन्न प्रकार की डिजायर्स गुणों के अनुसार पैदा होती रहती हैं, और उसी गुणों के वशीभूत होकर मैं इस देह का उपयोग करता हूं और संसार में कर्म करता हूं। इसी प्रकार ये बाहर की जो प्रकृति है जिसको हम संसार कहते हैं, ये भी इन्हीं तीन गुणों से युक्त है, तो इसमें भी, इस प्रकृति में भी तीन गुणों का परिवर्तन निरंतर हो रहा है, और ऑटोमेटिक क्रिया इस संपूर्ण प्रकृति में हो रही है, उत्पत्ति भी हो रही है, देखो पालन भी हो रहा है, नाश भी हो रहा है, तीनों कर्म प्रकृति में हो रहे, नहीं हो रहा है, और मेरी करनी है उससे भी यही काम हो रहा है, मनुष्य उत्पन्न भी करता है, मनुष्य पालन भी करता है, मनुष्य नष्ट भी करता है, ये तीनों क्रियाएं हम करते ही नहीं करते, एक मनुष्य है वो बच्चे पैदा कर रहा है, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है, पैदा कर रहा है नहीं कर रहा है, और हम परिवार का पालन करते हैं, दोस्तों की सुरक्षा करते हैं, पालन करते ही करते हैं, और हम नाश भी कर देते हैं, युद्ध करते हैं, मार देते हैं, नाश भी करते हैं, तो तीनों क्रियाएं मेरे द्वारा हो रही है नहीं हो रही है, सतोगुण भी हो रही है, रजोगुण भी हो रही है, तमोगुण भी हो रही है, तो यही क्रिया पूरी प्रकृति में हो रही, प्रकृति में सारा यही चक्र तो चल रहा है, नए तारे पैदा होते हैं, वो उनका पालन होता है, वो अपने क्रिया करते रहते हैं और नाश भी हो जाते हैं, इसका मतलब चाहे वो मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी देह है, चाहे वो संसार के सूर्य चंद्रमा पृथ्वी लोग पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सबके अंदर ये तीन गुणों का ही चक्र चल रहा है। तो जब गीता ये समझा रही है अर्जुन को, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, वो उसको ये सिखा रहे हैं कि ये तेरी देह की क्रिया और ये बाहरी संसार की क्रिया, ये ऑटोमेटिक चल रही है, इसको प्रकृति चक्र करके कह रहे हैं, और इस प्रकृति चक्र को महाराज जी ने कैसे वर्णन किया है, वाणी के अंदर, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। ये है वो गुण गुणों में वर्त रहे हैं जो महाराज जी बयान कर रहे हैं, ये बात है। अब संपूर्ण प्रकृति में मनुष्य कुछ कर सकता है, और इस देह के लिए भी मनुष्य कुछ कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। जब तक इस देह ने जिंदा रहना है, प्रभु इसके लिए खाने की व्यवस्था भी करेंगे, प्रभु इसके लिए कमाने की व्यवस्था भी करेंगे, और प्रभु इस देह का पालन भी करेंगे। ये प्रभु का काम है, और ये काम वो करता है, हम जानते हैं। वो अंतर्यामी मेरे जिस्म में जान की तरह से है, या मेरे जिस्म में जो जान है, साधारण शब्दों में कहता हूं, महाजी कहते हैं प्रेमी उसी का नाम तो ईश्वर है। जो जीवन शक्ति तेरी देह को चला रही है, तेरे प्राण का संचालन कर रही है, तेरे प्राण के अनुसार तेरी देह की क्रिया कर रही है, वही शक्ति पूरी प्रकृति को चला रही है। तो संपूर्ण प्रकृति ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शक्ति से। महाजी कहते हैं प्रेमी एक अणु भी, एक कण भी ईश्वर शक्ति के बिना अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता। हम कण को तो नहीं जानते, परमाणु को जानते हैं, और परमाणु जानते हैं परमाणु में किस प्रकार की गति होती है। तो वो गति वैज्ञानिक जानता है, कभी बदलती नहीं है, एक जैसी गति परमाणु के अंदर होती रहती है। और कितनी एनर्जी होती है उसके अंदर, जो परमाणु विस्फोट होता है तब पता लगता है कि कितनी एनर्जी होती है उसके अंदर, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस एनर्जी में कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, होश नहीं है, वो जानती नहीं है। मैं जानता हूं कि परमाणु कैसे बना, कैसे उसके अंदर एनर्जी उससे प्राप्त की जा सकती है, कैसे उससे नाश किया जा सकता है, मैं जानता हूं। तो इतनी क्रिया होने के बाद भी वो जड़ की जड़ ही है, और जो हमको संसार में सारा दिखाई पड़ा है ये भी जड़ ही। लेकिन मुझको ये पता है कि मेरे अंदर चेतना है, मैं जानता हूं। देखो ना कि मन के अंदर एक डिजायर उठती है, वो डिजायर जब आपकी तीव्र हो जाती है तब आप क्या महसूस करते हैं? आप बेचैनी अनुभव करते हो, या आपके अनुभव में होता नहीं होता? कोई भी इच्छा आपके अंदर उठे और तीव्र हो जाए तो आप एक बेचैनी अनुभव करते हो। अब उस बेचैनी से मुक्त होने के लिए, आप उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार में इस देह के द्वारा प्रयास करते हो, मन का उपयोग करते हो, इंद्रियों का उपयोग करते हो, इस देह का उपयोग करते हो और संसार का उपयोग करते हो। और आपकी इच्छा जब पूर्ण होती है तो वो जो आपके अंदर बेचैनी इच्छा के कारण पैदा हुई थी उससे आप मुक्त हो जाते हो। तब आपका क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या आप कहते हो कि अब दिल को चैन मिला है, अब मेरे दिल को चैन मिला है? ये तो केवल शब्द यूज कर रहा है, लेकिन असली बात की जाए तो जो जीव बेचैन हुआ था अब वो जीव चैन में आ गया। तो जीव को बेचैनी किसके कारण हुई थी? प्रकृति के कारण। यदि हम प्रकृति की बात करें, तीन गुणों की बात करें, तो ये मन, इंद्रियां, देह, संसार प्रकृति के अंदर आ गया नहीं आ गया? तो जीव किस कारण बेचैन हुआ? प्रकृति के कारण। तो इसका मतलब जीव ने यदि परमानेंट चैन प्राप्त करना है, मैं परमानेंट चैन चाहता हूं, स्थायी शांति चाहता हूं, स्थायी संतोष चाहता हूं, तो मुझको इस प्रकृति से मुक्त होना पड़ेगा, मुझको इस प्रकृति से मुक्त होना पड़ेगा। तो इसलिए फिर अध्यात्म का रास्ता क्या है? गुरु कैसे इस जीव को मुक्त करता है? गुरु ही तो मुक्त कर सकता है आपको, आप तो जानते ही नहीं, आप तो अपने बारे में प्रकृति के बारे में जानते ही नहीं हो। गुरु जानता है क्योंकि वो प्रकृति से मुक्त होकर आपके सामने बैठा हुआ है, या उसका ज्ञान जो उसने शास्त्र के रूप में हमको दिया है, वो ज्ञान उसका अनुभवी ज्ञान है, वो उस अनुभव से गुजरा है, और कैसे उसने प्रकृति के बंधन से मुक्ति पाई है ये सारा ज्ञान उसने प्रैक्टिकली समता विलास में, समता प्रकाश ग्रंथ में हमारे लिए लिखकर छोड़ा है। तो वो सारा ज्ञान जब मैं सीखता हूं, और ये ज्ञान कभी थ्योरी पढ़ के कभी समझ में नहीं आता, दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य क्लेम कर ही नहीं सकता कि मैंने सारा शास्त्र पढ़कर सीख लिया है, वो समझ में आ ही नहीं सकता। कुछ बातें समझ में आ सकती, जहां वो खड़ा है जिस स्थिति में वहां की बातें वो समझ जाएगा, लेकिन आगे की बातें वो पढ़ लेगा, उसके वर्ड मीनिंग भी जान लेगा वो डिक्शनरी से, लेकिन वो समझ नहीं सकता उसको। इसीलिए ये रास्ता चलने वाला है, शास्त्र उसी की समझ में आ सकते हैं जो गुरु आज्ञा के अनुसार, गुरु मार्गदर्शन अनुसार लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो जहां खड़ा है वहां की बात वो आसानी से समझ लेगा और आसानी से कर भी लेगा। जैसे कि महाराज जी ने कहा, प्रेमी सादा जीवन अपनाओ, सादगी धारण करो, आहार तेरा सादा हो, पहनावा तेरा सादा हो, बोलचाल तेरी सादी हो। बोलचाल का मतलब, सादगी का मतलब हेरा फेरी करते हैं ना, चालाकी करते हैं बोलने में, मन में कुछ होता है प्रकट दूसरी बात करते हैं, तो कहते हैं तू सादगी धारण कर, ये काम हम कर सकते नहीं कर सकते, विचार करके देखो ये काम विद इन अप्रोच है या नहीं है, विद इन कैपेसिटी है या नहीं है, ये मैं कर सकता हूं, जानता हूं। इसी तरह वो सत्य के पालन की बात कर रहे हैं कि सत्य का मतलब एक ईश्वर ही सत्य है और उस पर तू पूर्ण विश्वास रख, पूर्ण भरोसा रख। इस सारी प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है, लेकिन वो ईश्वर उसमें परिवर्तन नहीं है। हर चीज में जिंदगी है और मौत है, उसमें ना जिंदगी है ना मौत है। जिंदगी का मतलब ना जन्म है ना मौत है, वो खुद जीवन रूप है, खुद चेतन शक्ति है, चेतन प्रकाश है। देखो महाराज जी ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे वाणी, चेतन प्रकाश, चेतन शक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो वो चेतन शक्ति है, चेतना उसे कहते हैं जो जानने वाली शक्ति होती है। इसका मतलब वो ईश्वर जानने वाली शक्ति है, मेरे बारे में और सारी शक्ति के बारे में जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में उपलब्ध है जिसको मैं जानता हूं, ईश्वर सत्ता उसको जानती है। तो विचार करने की बात यह है कि वो ईश्वर जिसमें परिवर्तन नहीं है और वो जानने वाली सत्ता है, तो मैं उस पर विश्वास करूं या जो जड़ है, जो प्रकृति के अंतर्गत है, जो जानती नहीं है, जो ईश्वर के अधीन कार्य कर रही है, मैं उस पर विश्वास करूं? मुझे विश्वास तो ईश्वर पर करना चाहिए ना, क्योंकि जो जाने वाली शक्ति है उसी को हम कर्ता भी कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? प्रकृति का कर्ता ईश्वर है नहीं, मतलब तो कि प्रकृति ईश्वर के अधीन है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर अलग है और प्रकृति अलग है। इसीलिए दूसरा सत्य महाजन नियम दे रहे हैं, और सत्य नियम का मतलब यह है कि ऐसी शक्ति पर, ऐसे ईश्वर पर मैं विश्वास करूं कि कारणकर्ता वो परमेश्वर है, उसके बिना सृष्टि में कोई पत्ता हिल नहीं सकता, तो इसलिए मैं चालाकियां क्यों करूं? तो मैं सत्य का जीवन में पालन करता हूं, मैं डरता नहीं फिर किसी से। हाय पता नहीं सत्य का पालन किया तो मैं लुट तो नहीं जाऊंगा, दुनिया मुझे लूट तो नहीं लेगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ये वही व्यक्ति बात कर सकता है जिसके अंदर ईश्वर का विश्वास नहीं है जैसा कि शास्त्र कह रहे हैं वैसा। तो यदि कारणकर्ता परमेश्वर है और वाणी उसका निर्णय कर रही है कि जो होना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा मही, तो मैं डरता क्यों हूं? मुझको सत्य बोलने से, सत्य व्यवहार करने से डर इसलिए लगता है कि मैं दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाऊंगा और दुनिया मेरा मिसयूज करेगी, मुझे धोखा देगी, यही तो डर लगता है। तो जो ईश्वर विश्वासी है वो डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? कि वो जानता है कि कारणकर्ता परमेश्वर है, ये उसके अंदर बिल्कुल पक्का निश्चय होता है। इसलिए वो लोगों से क्यों डरे? वो लोगों से क्यों डरे? तो उस ईश्वर पर निश्चय रखकर अपना संसारिक व्यवहार करना, यह है सत्य। जो मां जी दूसरा नियम लिख रहा है संतालवास। तीसरा वो सेवा कह रहे हैं। सेवा जानते ही आप कि स्वार्थ भावना आपके अंदर जैसे जैसे हर वर्ष आपका जीवन का व्यतीत हो रहा है, आपके अंदर स्वार्थ भावना धीरे धीरे बढ़ रही है। आपकी वे ऑफ लाइफ ही इस तरह की है, जीवन जीने का तरीका ही आपका इस तरह का है कि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है आपके अंदर स्वार्थ के संस्कार गहरे होते हैं। देखा नहीं है हर व्यक्ति का विकास किससे कैसे होता है? उसकी इच्छाओं का विकास होता है। मनुष्य का सांसारिक विकास क्या है? आप प्रैक्टिकली देखो कि इच्छाओं का विकास होना यह सांसारिक विकास है। आज मेरे पास पैसे कम थे, लोग सब साइकिलें चलाते थे, मेरे अंदर साइकिल की इच्छा होती थी। उसके बाद लोगों ने देखा कि स्कूटर आ गए सबके पास, तो मेरे अंदर स्कूटर की इच्छा हो गई। उसके बाद देखा लोगों के पास जो है कारें आ गई, मेरे अंदर कार की इच्छा हो गई। इच्छाओं का विकास हो रहा नहीं हो रहा? हर मामले में यही होता है, चाहे घर की सफाई के मामले में हो, चाहे घर के कंस्ट्रक्शन के मामले में हो। आज पहले एक ईंटों का फर्श हुआ करता था हमारे घर में, आंगन में ईंटों का फर्श। उसके बाद सब घरों में सीमेंटेड हो गए तो सीमेंटेड फर्श बन गया। उसके बाद उसमें लाल रंग लगना शुरू हो गया, सब घरों में सीमेंट पे लाल लगना शुरू हो गया। उसके बाद मोजैक का जमाना आया तो सब घरों में मोजैक दिखाई पड़ने लगा। अब पत्थर लगने का जमाना आया है, अब सब घरों में पत्थर ही लगता है। उसके बाद अब टाइल्स का जमाना आया है कि पत्थर में ज्यादा दिक्कत होती है, अब टाइल्स लगना शुरू हो गई। देखिए आपका विकास कैसे हो रहा है? इच्छाओं का विकास हो रहा है, खर्चों का विकास हो रहा है, इनकम का विकास हो रहा है, यही तो विकास का है माध्यम। तो ये स्वार्थ बढ़ रहा है या परमार्थ बढ़ रहा है? तो जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ रही है, मैं इस वासना के, इस डिजायर के गहरे जाल में फंसता चला जा रहा हूं और मुझे इस बात का होश नहीं। इसी को महाजी कह रहे हैं, प्रेमी तेरी देह और ये संसार ये पांच तत्व से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये इसका रॉ मटेरियल है। और हर तत्व का हम जानते हैं कि हर एलिमेंट का एक गुण होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो तत्व होगा उसके गुण होते हैं। तो ये जो देह जिन तत्वों की बनी है इसके भी गुण है, तो इनके जो गुण हैं उसको कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो स्वार्थ जो तेरा बढ़ रहा है, ये स्वार्थ ही ये पांच विकार में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो भी तेरे अंदर इच्छाएं बढ़ेंगी वो इन पांच विकारों के अंतर्गत ही होंगी 100%। यदि तू समाज सेवा भी करेगा ना, तुझको पता नहीं है इसमें से कौन सा विकार समाज सेवा बढ़ा रही है तेरा। यदि यह बात नहीं होती तो महाजी समतावलास में यह बात लिखते ही नहीं कि देश भक्ति भी देह परायणता है। ये बात साइंटिस्ट और समाज के लोग नहीं समझ सकते, ये आध्यात्मिक लोग समझ सकते। देश भक्ति भी देह परायणता है। यदि देशभक्ति निष्काम है, और निष्काम कब होती है? निष्काम तब हो सकती है देशभक्ति जब मनुष्य निष्काम होने के लिए जी रहा है, कामना से मुक्त होने के लिए जी रहा है। तो देशभक्त कामना से मुक्त होने के लिए देशभक्ति नहीं कर रहा है। जो ईश्वर भक्त है, जो अध्यात्म मार्ग पर चल रहा है, जिसने जीवन में सदगुरु धारण किया है, जिसने शास्त्रों के मर्म को समझा है, वो सेवा करता है देश की कामना से मुक्त होने के लिए निष्काम रूप में। तो बताइए मुझे कि उसके अंदर क्या विचार उठ रहा है सेवा करने से पहले, कि मैंने सेवा के द्वारा इस देह के मोह से मुक्ति पानी, वस्तुओं की जो इच्छा मेरे अंदर पैदा हो रही है, इनकी जो वासना है, उसके बंधन से मैंने मुक्ति पानी है, उसका उद्देश्य ही सेवा करने का ही है। तो महाजी जब सेवा की बात कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि तेरे अंदर स्वार्थ भावना धीरे धीरे कमजोर हो और तू ईश्वर की तरफ आसानी से बढ़ सके। तभी तो संतवाणी कह रही है, दो हाथ उलीचिए घर में बाढ़ है दाम। यदि भगवान ने प्रारब्धवश तेरे घर में सुख दे ही दिए, तेरी इनकम इतनी हो रही है, तेरी 10 पुस्तें भी खाती रहे तो बैठ के वो खा सकती हैं, तो शास्त्र परमिशन नहीं दे रहे हैं उसको भोगने की। वो कह रहे हैं कि यदि प्रारब्धवश आ गया है तो संसार में गरीब भी तो हैं, दुखी जीव भी तो हैं, तो उनके दुख में उस चीज को लगा, ना कि पोते पड़पोते के लिए जोड़ के रख ले कि ये मोह तेरा बोल रहा है, ये तेरा मोह बोल रहा है। तो उसको निष्काम सेवा में खर्च करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए माजी तन मन धन का त्याग करें, अर्थात मन से भी सेवा। मन से सेवा कैसे होती है? मेरे मन में विचार उठ रहे हैं, अब ये विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मन की सेवा है नहीं, ये विचारों की सेवा है नहीं, इससे लोक कल्याण हो रहा नहीं हो रहा है। ऐसी तन से भी कोई रोगी है, कोई दुखी है, वो काम नहीं कर सकता अपना, मैंने इसका काम कर दिया, लाचार है, धन की और धन की तो जानते ही। तो सेवा जो प्रकृति के सुख तुझको मिल रहे हैं, प्रकृति के साधन तुझको उपलब्ध हैं, इसको तू लोक कल्याण में, लोगों का दुख दूर करने में लगाने की कोशिश कर, इसका नाम है सेवा। जब लोगों के लिए लगाएगा तो तेरा क्या फायदा होगा? तेरा जो 5 विकार हैं, ये जो इसके कारण तेरे अंदर पैदा हो रहे हैं, ये धीरे धीरे कमजोर हो। इसके बाद वो कह रहे हैं सत्संग, ये काम आप बिना अध्यात्म विद्या की जानकारी के, अध्यात्म के बोध के बिना क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए सत विचारों का संग। सत्संग क्या है? सत्संग 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो सदगुरु का संग, किसी को ऐसा भाग्य मिल गया जैसे भगत जी को मिल गया, 16 साल महाजी के संग रहने को मिल गया, या तो ऐसा कोई भाग्यशाली जीव हो, वो तो करोड़ों में कोई एक होगा, करोड़ों में कोई एक होगा जिसे गुरु के संग रहने को मिल जाए। नकली गुरु के संग रहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, असली गुरु के संग रहने वाला कोई करोड़ों में एक होगा। तो आम व्यक्ति तो वो बात लागू ही नहीं होती। तो हम तो दूसरा ही सत्संग करते हैं कि सत विचारों का संग। तो यहां बैठे ये सत विचारों का संग हो रहा है, ये सत्संग है। ये भी ना मिले तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, सत विचारों का संग हो रहा है। कोई भी पुस्तक नहीं अच्छी से पढ़ लिया हमें अच्छे अच्छे विचार, ना ना, वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब यह है सत विचारों का संग। सत विचार कौन सा है? जो सीधा ईश्वर से प्रकट हुआ है, ईश्वर से सीधा हमारे पास आया है, वो है सत विचार। इसलिए सत्पुरुषों की कलम से या सत्पुरुषों के मुख से जो विचार प्रकट हुआ है, उसी को सत विचार कहते हैं। जैसे गीता किससे प्रकट हुई? वेद व्यास से प्रकट हुई, उन्होंने कृष्ण का नाम लेकर उसको लिखा, लिखा वेद व्यास ने। महाजी से पूछा भी, महाजी युद्ध भूमि में क्या 18 अध्याय इतने सारे हैं गीता के, क्या इतना वक्त था वहां पर अर्जुन जो है पूछता रहता और कृष्ण बताते रहते? बोले ओ प्रेमी, अर्जुन तो बहुत समझदार था, कृष्ण ने सूत्र रूप में उसको बात बताई थी, बाद में वेद व्यास ने उसको विस्तार से उसको ज्ञान को लिखा। तो ज्ञान को हमेशा ईश्वर ही लिखता आया है, ऋषि तो ईश्वर ही होता है ना, ब्रह्म ऋषि बोलते हैं इसीलिए उसको, वो ब्रह्म है, खुद ब्रह्म है। तो वो गीता कह रही है कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इसका मतलब वो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं ये प्रकृति मेरे अधीन स्वयं ही चल रही है, स्वयं कार्य कर रही है। जैसे एक ऑटो मोड में कोई चीज डाल देते ना तो वो स्वयं चलती रहती है, जैसा आपने फीड कर दिया वैसे ही चलती रहेगी, वैसी क्रिया करती रहेगी, जैसे रोबोट काम करता है नहीं करता, ऐसे ही रोबोट की तरह से मेरी देह और ये बाहर की प्रकृति सारी कार्य कर रही है ईश्वर के आगे, और वो जो प्रोग्राम है वो ईश्वर ने इस देह के जन्म लेते ही इसमें फीड कर रखा है। अब ईश्वर शक्ति से ये प्रक्रिया इसकी रोबोट की चल रही है। अब विचार करके देखो आज मैं कितनी गलत फहमी में जी रहा हूं कि मेरे करने से ही सब कुछ हो रहा है, मेरे करने से ही आगे होगा, ये तो साफ चौपट हो जाए। कितनी चिंता फिक्र लेकर मैं संसार में जीता, ऐसा जीव विचार करके देखो क्या ईश्वर का सिमरन कभी कर पाएगा, या विचार करके देखो जिसके अंदर इतनी चिंता फिक्र, इतने शौक, इतनी इच्छाएं उसको हर समय बाहर धकेलती हों, इंद्रियों को कर्म में प्रेरित करती हों, लगाती हों, तो ऐसा जीव क्या शांत मन से ईश्वर का सिमरन कर पाएगा, संभव है क्या? तो साफ पता रहता है ये कार्य असंभव है। तो इसलिए जब तक मुझको इस ज्ञान की समझ नहीं है कि मैं गलती क्या कर रहा हूं, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, ईश्वर से प्रेम करना चाहता हूं, ईश्वर में मन लगाना चाहता हूं, लेकिन मन तो बाहर को भाग रहा है। मैं एक एक घंटा बैठा रहता हूं सिमरन के लिए, अकाउंट देखता हूं कि 5 मिनट सिमरन हुआ, 55 मिनट तो संसार का सिमरन हुआ, हालत मेरी ये होती है। फिर पूछता हूं ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं पा रहा है। तो अब गुरु बेचारा क्या करे, वो भी हम लोगों के आगे बेचारा बन जाता है। वो कह रहा है सब कुछ तो मैंने तुझे बता दिया, उसके अनुसार तू सोचेगा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसके अनुसार तू परहेज करने की कोशिश नहीं करेगा, तो तेरा मन अंदर कैसे जा सकता है? अभी तो मन को बाहर का चस्का लगा है ना, अंदर का चस्का तो मन को लगा ही नहीं। इसीलिए महाजी कहते हैं प्रेमी बिना विवेक और बिना वैराग्य के सही अभ्यास नहीं हो सकता। देखो संतरदास ने यह भी लिखा हुआ है, बिना विवेक बिना वैराग्य के सही अभ्यास नहीं हो सकता। तो जिसके अंदर शास्त्र की सही समझ आएगी उसके अंदर वैराग्य नेचुरल होगा। उसका मन जैसा हमारा चीजों में फंसा रहता है नहीं फंसता, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई शुगर कोटेड कड़वी चीज हमको दे दे और हमको पता लग जाए अंदर से कड़वी है बाहर से शुगर कोटेड है, हम कभी सेवन करेंगे उसका? कभी नहीं करेंगे। जब तक शुगर दिखाई पड़ रही है, हाँ बड़ी सुंदर है, खा लेंगे। तो जब हमको इस प्रकृति के दोषों का पता लगता है, ये 5 विकार से युक्त है, 3 गुणों से युक्त है और ये निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, तो मैं तो सारी जिंदगी बेचैन रहूंगा जम्मू। इस करके वाणी कह रही है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, ये वैराग्य की बात है। लेकिन लोगों के लिए वैराग्य की बात नहीं है, क्यों कहेंगे? वो कहेंगे राजा दुखिया, मैं तो मुझे राजा बना दो, मैं तो सुखी हो जाऊंगा। किसी व्यक्ति से कौन संसारी व्यक्ति से कहेगा क्या वाणी बात कर रही है, मुझे राजा बना दो मैं तो सुखी हो जाऊंगा? लेकिन राजा से पूछो, उसको अपने बॉर्डर सिक्योर करने के अंदर जो है सारी शक्ति लगानी पड़ रही है, बेचारा वो सो नहीं पा रहा है, देश के अंदर गद्दार पैदा ना हो जाए उसकी उसको केयर करनी पड़ रही है, अपने महल की, अपनी देह की, अपनी वस्तुओं की रक्षा करनी पड़ रही है अपने ही स्टाफ से, उसमें कोई जासूस तो नहीं घुसे है, मिलिट्री तैयार करनी पड़ रही है बॉर्डर की रक्षा के लिए, कितनी चिंता है उसको। जैसे कि हम डीएम को जानते हैं जिले का, कितनी चिंता फिक्र होती है। ये डीएम की आप कार्य प्रणाली देखो तो स्टेट गवर्नमेंट एक डीएम के ऊपर कितना वजन लाद देती है। आजकल बेईमानियां बढ़ गई ना कि हर स्तर पे बेईमानी हो रही है, हर स्तर पे बेईमानी हो रही है। तो आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबका जिम्मेदार फाइनली कौन, डीएम। कोई प्रोजेक्ट बना गांव में, गांव के लिए है, घपले हो रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदार बना दिया डीएम। डीएम बेचारा कहां कहां जो है भाई ईमानदारी की गारंटी लेगा। सोचो जरा, जो डीएम का पद हमको बड़ा सुंदर लगता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं आईएएस बन जाऊं, आईएएस बनके डीएम बन जाऊं मैं, क्या रुतबा होगा मेरा। लेकिन डीएम से पूछो जो इतने जिम्मेदारी से दबा बैठा हुआ है, वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करता रहता है। और आए दिन एक क्लर्क के इतने ट्रांसफर नहीं होते जितने डीएम पर ट्रांसफर होते। ना बेचारा गृहस्थी ठीक से पाल सकता अपने, ना खुद चैन से सो सकता अपने। ये तो डीएम बनने के बाद पता लगता है, दूर से देखे तो डीएम कुर्सी बहुत अच्छी नजर आती है कि क्या रुतबा है, कितनी सिक्योरिटी है, कितना बड़ा बंगला दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, कितने लोग उसको पूछते हैं। ये बाहर का सुहाना सफर नजर आता है, लेकिन जो भुगतता है वो जानता है। तो वाणी जो कह रही है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया जिस शोभा पाई करता। जिसने ईश्वर के रास को जाना वो सुखी जीव है। क्यों सुखी जीव है, जिसने ईश्वर को रास को जाना वो जानता है ये सारा मेरा मन इंद्रियां देह और संसार का व्यापार ये प्रकृति चक्र है। तो जीव जीवन जीता है इसलिए कि मैं इस प्रकृति के बंधन से कैसे मुक्त हो हूं। तो इसी प्रकृति के चक्र को गीता लिख रही है कि गुण गुणों में वर्त रहे। इसका मतलब जीव के अंदर जो कर्तापन है, मैं करने वाला हूं, मेरे करने से कुछ होगा, यही जीव की गलत फहमी है। ये जीव की सबसे घोर अज्ञानता है। जीव करता है ही नहीं। गुण गुणों में वर्त रहने का मतलब हो गया जीव करता है ही नहीं, लेकिन करता ये बना हुआ है अपने आप को देह समझने के कारण। इसलिए वाणी याद दिला रही है, देखो वाणी ही तो याद दिलाएगी आपको, सकल जगत का कर्ता। इस जगत में देह शामिल है या अलग है जगत से? सारे मनुष्य इस जगत में शामिल है या अलग है इससे? सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। तो फिर जीव किस लिए संसार में आया? आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। जीव ने जीवन जीना था संसार में अकर्ता होने के लिए, और मैं जीवन जी रहा हूं कर्तापन बढ़ाने के लिए। छोटा करता होता है ना, बालक छोटा करता होता है, छोटी छोटी चीजों का अहंकार होता है। मैं अपना कर्तापन बढ़ा के बड़े बड़े कामों का कर्ता बन जाता हूं। मेरा कर्तापन गहरा होकर मुझको संसार से विदा कर देता है। तो बताइए, ये जीव का संसार में पतन हो रहा है, लेकिन संसार इसको विकास करके देख रहा है। इसीलिए जैसे जैसे महाजी कहते थे प्रेमी, ये भोगवाद का युग बढ़ेगा। अब देखिए सत्पुरुष की बात, जैसे जैसे ये भोगवादी जीवन बढ़ेगा, जिसको महाजी कहते थे मायावाद, जैसे जैसे ये मेटेरियलिज्म संसार में बढ़ेगा, वैसे ही वैसे मनुष्य घोर स्वार्थी होता चला जाएगा। और इस घोर स्वार्थ का नतीजा क्या निकलेगा कि लोग आपस में ही एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जब यह स्थिति आएगी तब अगला स्तर महाजी लिख रहे हैं समता विलास में कि फिर ये आपस में ही कट करके मर जाए। यह है हमारी भौतिक प्रगति का फाइनल रिजल्ट। तो इसलिए महाजी कहते हैं प्रेमी बाहोश होकर मर्यादित जीवन व्यतीत करो। जो तुम्हारा स्वार्थ जीवन है अर्थात जो सांसारिक जीवन है, और जो ये परमार्थ जीवन है जो ईश्वर वाला जीवन है, इन दोनों का की समय सीमा बांधकर इनका प्रोग्राम बनाओ और घर की व्यवस्था भी चलाओ, कोई मना नहीं करता उसको, लेकिन साथ में होश में रहते हुए इस आध्यात्मिक जीवन को भी साथ साथ चलाते रहे, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने आध्यात्मिक जीवन के लिए जीना है, उसके लिए नहीं जीना। धीरे धीरे आपको होश आ जाएगा कि जो मैं सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा हूं इसमें मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ ये पुरुषार्थ आप कर पा रहे हो, जो मौके मिल रहे हैं, उसको भी उसे उसके ईश्वर के हुक्म में देखना सीखो कि प्रभु ने मेरा जीवन कैसे चलाना है संसार में, क्या सुख देने हैं क्या दुख देने हैं, उसके हिसाब से वो प्रेरणा भी देगा, उसके हिसाब से वो साधन भी देगा, उसके हिसाब से वो शक्ति भी देगा, और उसकी व्यवस्था भी वो हम ही सबको प्रेरित करके करवाएगा। हम ही लोग तो व्यवस्था करते हैं सब एक दूसरे, तो प्रभु इस काम को हमसे खुद करवाएंगे, इस बात का हमको होश रहना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत बनी हुई है ना कि अपने आप को देह समझने के लिए, इसलिए मैं करता हूं ये होश मेरा पक्का बना रहता है, तो धीरे धीरे ये होश आपका कमजोर पड़ेगा और आप इस चीज को सीखने लगोगे कि जो करता है प्रभु करता है, मेरा जो शरीर का रोल भी उसमें शामिल है, कि इसीलिए मैं चिंता नहीं करनी, हाँ कर्तव्य परायण होकर कर्तव्य के बोध से मैंने संसार के कर्म कर लिए, और इस कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए मैंने अंदर ईश्वर की उपासना करनी है। कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब देह के बंधन से मुक्त होने के लिए मैंने ईश्वर की उपासना करनी है। मेरा जो जीवन का असली कर्म है वो ईश्वर भक्ति है, जिसके लिए ईश्वर ने मुझको ये मानव जन्म दिया है वो ईश्वर भक्ति है। प्रभु के सिमरनकार में ये दुर्लभ जीवन पाए, वाणी आपको याद दिला रही है। तो इस प्रकार जो आप कह रहे थे कि तन मन का त्याग कैसे होगा, ये ऐसे तन मन का त्याग होता है कि मनुष्य पूरी प्रकृति से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। तो ये जो प्रकृति है, देखो अब शरीर की रचना देखो, बार बार आप सुनते हैं ना कि प्राण का उदय नाभि से होता है, नाभि में निवास कुंडलनी का होता है, तो कुंडलनी शक्ति जो है वो आपके इस जन्म का कारण है, क्योंकि आप की जब मृत्यु होती है, अर्थात देह की जब मृत्यु होती है, तो साफ साफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इंद्रियां मन ये और उसका प्राण ये सब कहाँ प्रवेश कर जाते हैं उस समय, कुंडलनी में प्रवेश कर जाते हैं। देखे में तो कुंडलनी शक्ति है ना, जिससे उदय हुए थे उसी में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये प्रवेश करते हैं तो संसार का आपको बोध नहीं रहता रहता ना, तो जीव का संसार भी उसी में प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए ये जो कुंडलनी शक्ति है इसी में से फिर ये वापस नई देह के रूप में, मन वही इंद्रियां वही संसार भी वैसा ही, क्योंकि पांच तत्व की प्रकृति ऐसी रहेगी ना हमेशा, तो आपको एक नए जगत नई देह के रूप में आपकी संपत्ति प्रहा वापस दे दी जाती है। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन मात्र इतना ही होता है कि अब आपको एक प्रारब्ध दिया गया है, जो कर्मफल पास्ट में आपके ड्यू रह गए भोगे नहीं आपने, उसमें से एक पैकेज आपको इस जन्म में भोगने के लिए और करने के लिए दे दिया गया। वैसे ही परिस्थितियों में आपका आपकी देह का जन्म होगा, वैसे ही लोग आपको उपलब्ध होंगे, वैसे ही बाहर की प्रकृति आपको उपलब्ध होगी, लेकिन बंधन वैसे का वैसे रहना, जैसा इस जन्म में ऐसे अगले जन्म में होगा। तो इसलिए महाजी कहते हैं प्रेमी हर जन्म में इसी प्रकार तू भोगता रहा, इसी प्रकार तू बेचैनी लेकर जीवन जीता रहा, सोच रहा था मैंने प्रगति की है लेकिन तुझको पता ही नहीं चला कि तूने अपना पतन किया। हर जन्म में तू अपना पतन करता रहता है यदि तुझको ईश्वर का होश नहीं है, यदि तू ईश्वर के लिए नहीं जी रहा है तो, क्योंकि ईश्वर के लिए जीने वाले इंसान के अंदर तीन गुणों में से किस गुण का विकास होता है, सतो गुण का विकास होता है, जो गुण उसको सत की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की ओर ले आते, और गुण अंदर है बाहर नहीं है, वो तेरे मन के अंदर गुण है। वो तो इस मन के अंदर सतोगुण का विकास होता है, तो ऐसा मन ईश्वर के सिमरन में लग जाता है। मन के अंदर डिजायर ही ईश्वर की याद करने की होती है। जैसे कि जो लोग रोज सिमरन करते हैं, मान लिया घंटा दो घंटा सुबह शाम, वो यदि इस सिमरन के वक्त यदि कहीं घूमने चले जाएं तो उनको याद आती रहेगी, अरे आज सिमरन छूट गया, आज सिमरन छूट गया, आज सिमरन नहीं हो पाया। और यदि कोई रोज घूमने की आदत हो, उस समय सिमरन करने बैठ जाए, तो यही मन क्या याद करेगा, आज घूमना छूट गया, आज घूमना छूट गया, आज सिमरन करना पड़ गया, होगा नहीं होगा। तो जो इस मन सोच रहा है कि सिमरन छूट गया, मेरा घूमना छूट गया, सिमरन करना पड़ रहा है, ये रजोगुणी मन है। और जो मन यही याद कर रहा है कि सिमरन मेरा छूट गया, आज घूमना पड़ रहा है, ये सतोगुणी मन है। ऐसी वृत्ति इस मन के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये मन बताइए सिमरन में जाएगा लगेगा या ये संसार में लगेगा। तो इसीलिए ये गुणों का विकास मैंने करना है। तो ये महाराज जी ने पांच पॉइंट दिए, सादगी सत्य सेवा सत्संग और सत्सिमरण, ये इसी वास्ते दिए ना कि धीरे धीरे ये जीव कैसे अपने ही मन इंद्रियां और देह से धीरे धीरे ऊपर उठे, और इसके अंदर जो तमोगुण और रजोगुण है ये कमजोर पड़े और सतोगुण इसके अंदर स्ट्रांग हो। और सतोगुण जब स्ट्रांग होता है तो ये जो मन है, इसके जो ये प्राण हैं और इसकी जो इंद्रियां हैं, ये इस जीव के होश में रहते रहते कुंडलिनी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये है योग विद्या। अंदर सिमरन करते करते पहले इस जीव को कुंडलिनी का बोध होता है, उसके बाद इसकी आगे की प्रक्रिया जो है वो एडवांस होती है, गहरी होती चली जाती है। तो धीरे धीरे ये अपने ही इंद्रियों का दृष्टा बन जाता है, जिसको उपनिषद में कहा गया चक्षुषाह चक्षु, अर्थात इसकी ऐसी अवस्था हो जाती है सिमरन करते करते कि ये अपने चक्षुओं को ही देखने वाला बन जाता है, अर्थात जीव ये दृष्टा बन जाता है, उसको दृष्टा भाव कहते हैं कि अभी मैं आंख से देख रहा हूं, फिर आंख आगे है, मैं आंख के पीछे हूं, मैं आंख को देख रहा हूं, सारी सृष्टि आंख के अंदर सिमट के आ गई, सारी सृष्टि आंख के अंदर सिमट के आ गई। यह है जीव का दृष्टा भाव। ये तभी हो सकता है जब मन बिल्कुल खड़ा हो जाए, बिल्कुल स्थिर हो जाए, उसमें विचार नाम की तरंग उठनी बंद हो जाए, योगी की यह स्थिति तब आती है। तो उपनिषद उस स्थिति का बयान कर रहा है। ये जीव की ही स्थिति है, अभी ईश्वर नहीं बना है वो, उसकी साधना की स्थिति होगी चक्षुषाह चक्षु। अब बताइए ऐसा जीव जब इस अवस्था से वापस नॉर्मल स्थिति में आएगा तो क्या संसार की तरफ भागेगा? वो कहेगा अरे क्या समझाता संसार को, क्या समझाता इस देह को, ये तो मुझसे अलग है, ये देह मुझसे अलग है, मैं इसका दृष्टा हूं। यहां आके पता लगता है कि गीता क्या कह रही है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, ये प्रकृति मुझसे अलग है, प्रभु मेरा मालिक है, क्योंकि अब मैं प्रभु के साथ हूं, तो इसलिए वो प्रभु में ही लीन होना चाहता है, प्रभु ही बनना चाहता है, इस प्रकृति के बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो सत्पुरुष की इस बात को समझा जाए, उसके ज्ञान के अनुसार चला जाए, तब पता लगेगा वाणी जो कह रही है तन मन का त्याग ये क्या होता है। ये चैन का रास्ता है, शांति का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, हमको चलना ही चाहिए इस मार्ग पर, इसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।